दोस्तों, SBS हिंदी की लोकल टैलेंट सीरीज में अब तक हमने आपको कई उभरते कलाकारों से मिलाया था, पर आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के गुरु, ऑस्ट्रेलिया में एक जाना माना नाम नवल मुद्गिल जी से। नवल जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार अमित जी, धन्यवाद आपके समय के लिए।
ज्यादातर लोग आपका नाम जानते हैं, आपके कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं, आपको सुन चुके हैं, पर वो ये नहीं जानते कि आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ। तो आज हमारे सुनने वालों को प्लीज बताइए कि आपने अपना सफर, म्यूजिकल जर्नी कैसे, कब, कहाँ से शुरू की।
अमित जी, शुरुआत तो देखिए कि अपने पेरेंट्स से शुरू होती है, अपने माँ बाप से शुरू होती है।
जी,
तो हम लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट हुए थे, लाहौर से, फिर फिरोजपुर पंजाब में। एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारी फैमिली थी, तो उसमें हमेशा ही, बिकॉज फिरोजपुर जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि है, वहां पे उनकी अस्थियों को जो जलाया गया था, तो उस तरह से पेट्रियोटिकली हम मिट्टी के साथ बहुत जुड़े हैं, कला के साथ बहुत जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं। तो बचपन में मेरे जो पिताजी, मेरे पिता श्री गुरदास चंद शर्मा जी, वो थिएटर में बहुत अच्छे थे, पोइट्री में बहुत अच्छे थे, तो उनसे हम जैसे शहीद उद्धम सिंह, शहीद भगत सिंह, ये ऐसे बहुत सारा थिएटर करते थे। तो बेसिकली थिएट्रिकल बैकग्राउंड से शुरुआत हुई हमारी थिएटर में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और साथ में संगीत में, जैसे शास्त्रीय संगीत बचपन से सीखना शुरू किया, क्योंकि जब 80s में या 70s में कुछ टीवी नहीं थे, सिर्फ रेडियो थे, तो जो एंटरटेनमेंट थी दैट वॉज मोर लाइवली म्यूजिक, लाइवली आर्ट्स, लाइवली थिएटर, रादर देन इलेक्ट्रॉनिक। कोई लैपटॉप नहीं थे, कोई कंप्यूटर नहीं थे, कोई आईपैड नहीं थे, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो उस की बैकग्राउंड से शुरुआत करी। देन आफ्टर दैट आई डिड इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स डिग्री, एंड देन स्विच्ड इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया इन 1994। जब तक इंडिया में थे तो बचपन में शुरुआत करी श्रीनगर दूरदर्शन से, वहां से गाना शुरू किया डोगरी संगीत, फिर पंजाबी संगीत गाना शुरू किया, अपना ऑर्केस्ट्रा बनाया पंजाब में, तो लाइव हम शोज करते थे बहुत सारे। एंड फिर एजुकेशन में आए, साइंस और मैथ एजुकेशन दिल्ली में पढ़ाते रहे, तो साथ में जॉब करते थे। तो फिर यहाँ पे 1994 में इमिग्रेट किया ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ बहुत कम लोग थे, अभी तो जैसे बोलते हैं कि भी हम लोग विक्टोरिया में 5 लाख लोग हैं, तो उस वक्त सिर्फ 5,000 लोग थे। आप ये मान के चलिए कि जब यहाँ पे इमिग्रेट किया तो सिर्फ 5,000 लोग थे। तो इतना एक्सपीरियंस जब इंडिया से लेके आए, भारत से लेके आए, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक था, जीरो था। सिर्फ एक ही कार्यक्रम होता था सारे शहर में, वंस इन अ मंथ, जो महफिल नाम से होता था कॉन्सुलेट में, तो सारे महीने में 200 लोग इकट्ठे होते थे वहां पे। वो हम मंथली एक कार्यक्रम किया करते थे अर्ली 90s में, 1994 में। तो तब हमने बहुत सारे शोज भी किए, जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का शो, मेहदी हसन साहब का शो, गुलाम अली खान साहब का शो, जगजीत जी के शो बहुत सारे किए। तो उस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स में शो करवाने शुरू कर दिए, साथ में एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, खुद गाना, लोगों को प्रेजेंट करना, क्योंकि इतने कार्यक्रम थे नहीं, इतने लोग थे नहीं, तो उसको हम एक तरह से जो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना पाए, तो एजुकेशन की ध्यान बहुत किया, म्यूजिक एजुकेशन की तरफ।
जैसे कि आप बात कर रहे हैं म्यूजिक एजुकेशन की, ये वही समय था जब आपने अपने स्कूल की भी स्थापना की विक्टोरिया में।
हाँ जी, हाँ जी, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस ऑस्ट्रेलिया हमने 1994 में एस्टेब्लिश किया था।
जी,
तो जैसे ब्लैकबर्न गुरुद्वारा है, वो 1993 में हुआ था, तो एक छोटा सा हॉल था वहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग, तो वहाँ पे तबला सिखाना वहाँ पे शुरुआत करी। तो जैसे रॉक बैंक टेम्पल है, ये टेम्पल नहीं था पहले, तो हम लोग घरों में जा जाके चौकियां करते थे, जागरण करते थे, तब हम सिंगल पर्सन, तो हम बहुत घूमते थे, वहाँ कुछ सूफी म्यूजिक कर दिया, कहीं पे जागरण कर दिया, कहीं पे चौकी कर दी, कहीं पे गुरुद्वारा की गुरबानी शब्द कर दिया, संगीत कर दिया, जहाँ जहाँ जो टाइम मिलता, क्योंकि संगीत तो इज इन एवरी फॉर्म, स्पिरिचुअल म्यूजिक कुड बी एनी फॉर्म, बॉलीवुड म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, क्लब म्यूजिक, तो उस तरह की वर्सिटिलिटी है, बिकॉज आई गॉट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आर्ट बैकग्राउंड, तो हर तरह से, बिकॉज आई पर्सनली सी म्यूजिक फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो संगीत है वो नोट सेम है, नोट की लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप चाहे उसे जो है सारे गामा पाधा निसा बोले, CDEFGABC बोले, अलफ़बेट बोले, या डोरेमी लापता बोले, या वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज हो, संगीत तो संगीत है। उसी तरह से ही इंडियन म्यूजिक को इंडियन कम्युनिटी में प्रमोट किया, और क्रॉस कल्चरल कम्युनिटीज में उतना ही हमने जोर जोर से लगे रहे सभी कल्चर्स में करते करते। तो वो 1994 में किया, अभी हमारे जो 1994 में एजुकेशनल हम पढ़ा चुके, मोर देन 6,000 स्टूडेंट आई हैव टॉट टिल टुडे, 6,000 से ज्यादा, क्योंकि हर साल जो है 200-300 लोग हमारे पास एनरोल होते हैं, और वो फिर बाद में हम परफॉर्म करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, कॉन्फ्रेंसेज लगाते हैं, स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं। और अलग अलग कम्युनिटीज में जाके पढ़ाते हैं। तो नियरली 24th ईयर हो गया है, तो नियरली 6,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग एजुकेट कर चुके हैं और एंटरटेन तो मे बी मोर थाउजेंड्स बेसिकली।
आपने एंटरटेनमेंट की बात की तो मैं जानना चाहूंगा, दो सवाल है इसमें, कि 1990s में किस तरीके के गाने आप यहाँ गाते थे अपने समुदाय के लिए, और आज 2016 में किस तरीके का गाना गा रहे हैं?
हाँ जी, 1990s में जो जो संगीत था वो नेचर के साथ बहुत जुड़ा था, ट्रेडिशनल के साथ बहुत जुड़ा था। जैसे कि मैं जो पढ़ाता था तो मैं इट वाज माय फेवरेट क्लोथिंग कि मैं खादी का कुर्ता और सफेद पजामा और बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ हम लोग पढ़ाते थे
जी।
और जिसमें रागदारी थी, शास्त्रीय संगीत था, भजन थे, गुरबानी शब्द थे, या पुराने गीत थे, या पंजाबी गीत थे, या फोक म्यूजिक था, या सूफी म्यूजिक था। उसमें इलेक्ट्रॉनिकिज्म इतना ज्यादा नहीं था
जी।
उसमें इमोशन थी, उसमें एक्सप्रेशन था, उसमें फील्स थे, उसमें लोग जुड़े हुए थे, उस संगीत को हम इंजॉय करते थे। और जो जो संगीत उस तरह का था, जैसे गजलें थी बहुत सारी, उसमें गजल का बहुत अच्छा दौर था उन दिनों, क्योंकि जगजीत सिंह टॉप पे थे और गुलाम अली साहब का बहुत नाम था, मेहदी असर साहब गाते थे
जी।
तो ये सब उन दिनों में अर्ली 90s में यहाँ पे गजल का बहुत अच्छा माहौल था। हारमोनियम तबला लाइव चलता था हर घर में, हर जगह पे, हर घर में तबला होता था, हर घर में हारमोनियम होता था। और क्योंकि हमारे पास भी इतनी गैदरिंग तो होती रही थी, घरों में हम लोग गैदरिंग करते थे किसी ना किसी के घर में, इस तरह से हमने टाइम जो शुरुआत में एजुकेशन शुरू करी और एंटरटेनमेंट शुरू किया।
तो जो आज स्टेज पे जो माहौल है बहुत चमक धमक, यू नो, डीजे आरजे, डीजे वाले बाबू और ये सब चल रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं?
देखिए, समय के साथ साथ जो है एक तरह से देखें तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा है इन द सेंस कि जैसे इंडिया है, अभी भारत है, ये योगा आर्ट्स मेडिटेशन को एक्सपोर्ट कर रहा है सारे वर्ल्ड में, भारतीय संगीत को प्रमोट कर रहा है सारे वर्ल्ड में। भारतीय संगीत अर्लियर इट वाज एक्सक्लूसिव ओनली टू इंडिया, या जैसे दो तीन नाम ही होते थे बाहर जाते थे जो लोग, जैसे उस्ताद अला रखा खान है, पंडित शिव कुमार शर्मा है, या तीन चार लोगों को ही इंडिया से बाहर जाना जाता था। आज एवरी सिंगल आर्टिस्ट इज ट्रेवलिंग, आप देखिए सारे सारे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम है, सारे 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 संसार में भारतीय संगीत है, भारतीय फिल्में है, भारतीय थिएटर है
जी।
तो एक तरह से वो बहुत फायदेमंद है, उसका बहुत एक तरह से एक्सचेंज हुआ है, जो कल्चर एक्सचेंज हुआ है। जैसे कोई भी कल्चर इन इटसेल्फ इज नॉट एक्सक्लूसिव, तो भारतीय जो संगीत है वो बाहर गया, भारतीय फिल्में बाहर गई, और जो बाहर का संगीत है वो भारत में आया।
अच्छा नवल जी, एक बात जानना चाहूंगा, ये तो बात हो गई कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ऑस्ट्रेलिया में?
इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल है, बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही ब्राइट है। उसमें जो हमारे म्यूजिक इंटेलेक्चुअल्स हैं उन पे एक जिम्मेदारी आती है कि हम अपने जो संस्कारी संगीत है, जो संस्कारी हमारे लिरिक्स हैं, जो हमारा संगीत है, उसका बेस रख के उसके ऊपर चाहे हम कोई भी सजावट कर दें, कोई भी डेकोरेशन कर दें, किसी तरह का भी करें, अगर हम वो लेके चलेंगे तो हमारा जो अस्तित्व है हमेशा बचा रहेगा और हम हमेशा प्रगति करेंगे, हम उसमें विकास होगा हमारा। जैसे कि अब भारतीय संगीत, बॉलीवुड संगीत देखिए, जो उसमें इनसाइड जो वॉइस है, वॉइस तो अभी भी ट्रेंड इंडियन क्लासिकल ही है, बट दैट इज सराउंडेड बाय वेस्टर्न म्यूजिक, सो दैट इज गुड, वो अच्छा है, वो अच्छा है। लेकिन जो पढ़ाने वाले संगीतज्ञ हैं या शिक्षक हैं या अकेडमीज हैं या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उसको बचा के रखें, उसको भी प्रमोट करें, सिर्फ धंधा ही मत बनाए। म्यूजिक और फिल्म शुड नॉट बी ट्रीटेड मोर ओनली लाइक ए बिजनेस, इट शुड बी स्पिरिचुअल एंड बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, रादर ओनली स्पिरिचुअल और बॉलीवुड, इट शुड बी स्पिरिचुअल एंड बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, ताकि हम अपना जो भारतीय संगीत है वो भी हमारा एक तरह से बेस रहे, फाउंडेशन रहे, लाखों हजारों सालों से अभी तक चल रहा है, उसको हम दूसरे कल्चर में प्रमोट करें, दूसरे कल्चर का म्यूजिक अपने पास, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी मत छोड़ें।
जी नवल जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद, और चलते चलते दो लाइनों में आपकी तरफ से,
तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। धन्यवाद जी, नमस्कार।